سلام خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دل کی بات. میں نے جیسا کہ آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ میں پاکستان کی اکانومی کو دیکھنا چاہوں گا، کنسیڈرنگ کہ سب سے جو بڑا کوشچن ہے اس وقت پاکستان میں وہ اکانومی ہے، وہ میکرو اکانومی ہے. وہ کیا ایسی چیزیں نئی آنے والی گورنمنٹ جو پی ڈی ایم 2.0 آ رہی ہے، کیا ایسی چیزیں وہ پوٹینشلی کر سکتی ہے جس سے فائنلی ہم ایک سسٹینیبل گروتھ کی راہ پر گامزن ہوں گے. پاکستان میں اکانومی میں تھینکفلی پچھلے 2-3 سال میں بہت زیادہ انٹرسٹ پڑا ہے. لوگ جو ہیں وہ اب بیونڈ پیٹرول پرائسز اور ڈالر پرائسز، اب وہ تھوڑی بڑے لیول پہ بھی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار آخر اس اکانومی کا کیا حل ہے، وہ تنگ آ گئے ہیں وہ کانسٹنٹلی نازک موڑ سے جس سے ہم گزرتے رہتے ہیں. تو دا کوالٹی آف اینڈ دا لیول آف کانورزیشن ہیز ریڈیکلی انکریزڈ، اینڈ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے یہ دیکھ کے کہ فائنلی لوگ اب زیادہ سیریس اور پریسنگ کوشچنس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. آج میں نے سوچا کہ میں ایک کمپریہنسو اوور ویو کروں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، بیسڈ آن یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو میری اپنی ریسرچ ہے، جو میں نے خود اسٹڈی کیا، ساتھ ہی جو پوڈ کاسٹ کے اوپر بہت سارے ڈفرنٹ گیسٹ آئے اوور ٹائم، اور میں نے ان سے سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو اسٹرکچرل ریفارمس کی ضرورت ہے. بھائی بہت اچھی بات ہے اسٹرکچرل ریفارمس کی ضرورت ہے، بٹ آخر وہ اسٹرکچرل ریفارمس ہیں کیا؟ ہر بندہ آ کے کہتا ہے کہ یار ایکچوئل میں آپ کا مسئلہ جو بڑا کرونک ہے اس کو کچھ اسٹرکچرل چینجز چاہیے. جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اسٹرکچرل چینجز ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی. تو مجھے جو سمجھ آیا جب میں نے ان تمام لوگوں سے پوچھا، وہ یہ کہ اسٹرکچرل چینجز کی بات کرنے سے پہلے آپ کو پہلے اکانومی کی سمت کو سمجھنا ہے، اکانومی کے اوور آل اسٹرکچر کو سمجھنا ہے، جس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو وہ اسٹرکچرل چینجز ہیں وہ ایکچولی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایک لائن آپ کو میں بتا دوں کہ یار یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں سب بدل جائے گا. وہ ایکچولی اکانومی کی سمت ہے، وہ سمت درست کرنی ہے. اب اس سمت سے کیا مراد ہے آئیں جانتے ہیں. اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، آپ میں سے بیشتر لوگ جو ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، وہ آتے ہیں آگے دیکھتے ہیں مزے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں 3 لاکھ سبسکرائبر تک پہنچوں. تو براہ کرم آپ ایک سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں، کیونکہ میں بڑی محنت کر کے یہ ویڈیوز بناتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اب ہم پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے تو اس پہ ویوز بڑے کم آئیں گے، لیکن یہ کہ پڑھی لکھی بات اچھی ہوتی ہے، جن چیزوں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو، اور جب ویوز آتے ہیں اور جب لوگوں کا فیڈ بیک آتا ہے تو مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے کہ میں بناتا رہوں ایسی ویڈیوز. تو پلیز سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا. اچھا اکانومی کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ ایک گھر کو امیجن کریں، ایک ایوریج گھر جس کے اندر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ آپ کے ابو بھی ہیں، چاچوز ہیں، جو سب مل کے رہ رہے ہیں، وہ گھر کے سربراہان ہیں، مطلب مختلف سربراہان ہیں، اور اس میں تمام آپ لوگ بھی ہیں، آپ کے کزنس بھی ہیں، کچھ سمجھ لیں 20-30-40 لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، بڑا گھر ہے الحمدللہ. اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائمس میں نا سربراہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ہر 2-3 سال بعد گھر والے سارے مل کے بیٹھتے ہیں اور چنتے ہیں کہ یار اب ہمارا سربراہ یہ ہوگا. اچھا ہر دفعہ کوئی چاچو جو آتے ہیں نا نئے، وہ اپنے ایک ظاہر گھر کی پالیسی لے کر آتے ہیں، یو نو کہ گھر کا نظام کیسا ہوگا، اب ہم کیا باہر جا کے کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، یا گھر میں کھانا کھائیں گے، گھر کا جو خرچ ہے سب لوگ جو کماتے ہیں وہ سارا کا سارا اکٹھا ہو کے اب کیا وہ تعلیم پہ لگے گا، یا وہ جو ہے نیا فرنیچر لینے پہ لگے گا، گھر میں پینٹ کب ہوگا. وہ ہمیشہ یہ تمام سوالات آپ اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپ کی امی یا آپ کے ابو ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ یار اچھا اب رینوویشن کی ضرورت ہے، اچھا یار نیا ٹی وی لے لیتے ہیں، اچھا یار یو نو گھر کو پینٹ کر دیتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں، وغیرہ 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 مختلف چیزیں. تو آپ کے پیرنٹس کا بھی ایک ڈیسیجن میٹرکس ہوتا ہے جس کی بیسس کے اوپر وہی تمام ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں. پیسہ تو آ رہا ہوتا ہے اور اس پیسے سے آپ دیکھیں کافی دفعہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یار پیسہ آ بھی رہا ہے، پیسہ پڑا ہوا بھی ہے، یہ مجھے نیا موبائل کیوں نہیں لے کے دے رہے. لیکن آپ کے پیرنٹس کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اچھا نہیں ابھی ہم نے اس کی ایجوکیشن کے لیے سیو کریں گے، ابھی ہم جو ہے وہ یو نو ایسی چیزیں کریں گے جس سے لانگ ٹرم ہمیں فائدہ ہے. پیرنٹس ہمیشہ اس سوچ سے گھر کو چلا رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بڑا مشہور ہے کہ جی پیرنٹس اپنے کمرے میں اے سی نہیں لگواتے، اپنے بچے کمرے میں اے سی لگاتے ہیں تاکہ وہ سکون سے آرام سے سو سکے، اس کے لیے زندگی کنوینئنٹ ہو، سارا انفراسٹرکچر اویلیبل ہو تاکہ وہ جن چیزیں جو آپ کے والدین کروانا چاہتے ہیں نا آپ سے کہ یار پڑھو لکھو اسکل سیکھو جاب پہ لگو، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ان کا یہ نہیں ہوتا کہ بچہ عیاشی کرے کہ وہ سوئے اور اچھی سی نیند لے اور عیاشی کرے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار سوئے گا سکون میں ہوگا تو وہ صبح اچھے سے فریش اٹھے گا، اسکول میں دھیان دے گا، اچھی ایجوکیشن لے گا، ایونچولی ایک پروڈکٹیو ممبر آف دا سوسائٹی بنے گا، یا اگر میں اتنا بھی فلسفہ ہٹا دوں تو ایونچولی اچھا پیسہ کمائے گا. اب آپ نے اس مثال کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے جب آپ نے پاکستان کا سوچنا ہے، کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار پاکستان ایک گھر ہے اور اس گھر میں اس محلے میں بہت سارے اور گھر ہیں، مثلاً انڈیا ایک گھر ہے، سری لنکا ایک گھر ہے، اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ گھر ہیں، اور پھر اسی طریقے سے جب آپ گلی سے 2-3 گلیاں دور جاتے ہیں تو وہاں پہ اور لوگوں کے گھر ہیں، ڈفرینٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ امریکہ ہے، امریکہ کا گھر ہے، یہ تمام گھر ہیں مختلف، کوئی بڑا سا محل ہے جیسے امریکہ ہے، آپ کے ساتھ والا جو بالکل نیبر ہے وہ بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا اس نے گھر بنا لیا، پہلے تو ہم ہنستے تھے اس کے اوپر کہ یار یہ کیا نکمے لوگ ہیں، اب ان کا خوبصورت سا گھر ہے اور باہر پینٹ وینٹ اچھا ہوا ہے، ہر آتا جاتا کہتا ہے کہ یار انڈیا سے آپ کا بڑا سین ہے، इंडिया साहब तो जो है ना जिस तरह जा रहे हैं ये तो अमेरिका की तरह एक बड़ा सा महल बना लेंगे बड़े बड़ी जल्दी। और इसी तरीके से छोटे झोंपड़ियाँ भी हैं लोगों की, मसलन दो एक गलियाँ दूर जाएँ तो वहाँ पर बहुत सारी अफ्रीकाओं की झोंपड़ियाँ हैं, तो बहुत मुख्तलिफ हैं। आप पाकिस्तान को इमेजिन करें एक घर की तौर पर। अब एक एवरेज घर के अंदर जब आप रह रहे होते हैं तो उसमें जाहिर है कि आप जब घर के अंदर हैं तो उस घर के अंदर तो चलें आपके पास थोड़ा सा बाग भी है, उसमें आपने शायद थोड़ी सी गंदम भी उगा ली, आप सेब का आपने दरख्त लगा लिया, उससे आप सेब भी तोड़ के खा लेते हैं। लेकिन जब आपको पैसे कमाने होते हैं ना तो आप घर से बाहर जाते हैं, आप नौकरियाँ करते हैं, आप सारा कुछ करते हैं और फिर आप उस नौकरी से पैसे कमाते हैं, उस कमाए हुए पैसे से जाते हैं और जाके आप चीज़ें खरीदते हैं और वो चीज़ें खरीद के आप घर लेकर आते हैं। तो आपने जब एक मोहल्ले में रहना है तो आप अकेले बिल्कुल अपने आप को बंद करके नहीं रह सकते कि यार हम घर ही घर में सबके सब लगे रहेंगे और घर के अंदर जो है ना हम कुछ बना लेंगे और बाहर वाले भाड़ में जाएं, हमें उससे गर्ज नहीं है। आप बाहर जाते हैं, आप बाहर बात करते हैं, आप बाहर काम करते हैं, आप लोगों से डिफरेंट ट्रेड करते हैं, आपके पास फल सेब ज़्यादा है, आपके साथ वालों के यहाँ स्ट्रॉबेरी लगी हुई है तो आप सेब थोड़ा सा एक बास्केट में डालते हैं, उनके घर भेज देते हैं, उनसे थोड़ी सी आप स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं, वो आपको स्ट्रॉबेरी दे देते हैं। तो ये एक 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 ट्रेडिंग चलती रहती है आपके घरों के अंदर भी और इसी तरीके से हमारे मुल्क को भी। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ मुल्क को आपने उसी तरह इमेजिन करना है, ठीक है, मैं बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये एग्जांपल आपने दिमाग में रख ली, अब हम घुसते हैं इकॉनमी में। अब जो दुनिया की इकॉनमी है ना मॉडर्न डे में वो बड़ी कॉम्प्लेक्स इकॉनमी है। वो ये नहीं है कि यार मुझे रोटी कपड़ा मकान ला दो, मुझे गंदम ला दो, मुझे चिकन ला दो, मुझे दूध ला दो और कपड़े ला दो और बस मेरे घर बना दो और मैं खुश हो जाऊंगा। आजकल की इकॉनमी के अंदर आपको ये तो बेसिक्स है ना, खाना पीना, आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, आपको ट्रैवल करने के लिए गाड़ी चाहिए, आपको ट्रेन पे सफ़र करके दूर दूर जगहों पे जाना है, आपको इंटरनेट चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, ये चीज़ें आपके इस्तेमाल की रेगुलर चीज़ें हैं, मतलब इसके बगैर आप रह नहीं सकते। आपकी तनख्वाह जो है उस तनख्वाह में आपने इन तमाम चीज़ों का काउंट फॉर करना है कि यार मोबाइल फ़ोन उसका बिल आपने महीने का देना है, इंटरनेट आपने महीने का लगाना ही लगाना है, आपका बहुत सारे लोगों का काम अब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तालीम इंटरनेट से जुड़ी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, ये इतनी सिंपल नहीं है कि यार कि मैं बस पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में अपना माल बनाऊँगा, अपना माल खाऊँगा, बैठा रहूँगा, मुझे इससे गर्ज ही नहीं है कि दुनिया क्या करती है। अब जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो जहाँ जहाँ बनती हैं, उसका रॉ मटेरियल जहाँ जहाँ अवेलेबल होता है वो पूरी दुनिया से सोर्स होकर बनती हैं, जिसका मतलब ये है कि दुनिया की जो इकॉनमी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और बहुत ग्लोबलाइज हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोई सिविलाइजेशन या एक कोई नेशन कम्प्लीटली अपने बलबूते पे अपने उस पर सारा कुछ मैनेज कर ले। अगेन आप एक घर की मिसाल लें तो घर में इतनी जगह कहाँ होती है कि आप उसमें खाना भी उगाएं, गंदम भी उगाएं, गाय भी पालें, मुर्गी भी पालें, आप उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ चीज़ें तो कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपने मंडी जाना है और मंडी जाके आपने चीज़ों को खरीदो फरोख करके आपने उस ट्रेडिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, इसी के साथ साथ नौजवान नस्ल चूंकि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है तो उसमें कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, मतलब उसकी अब रिक्वायरमेंट डिमांड वो अब बड़ी फ़र्क हो गई है, वो अब इस पर नहीं खुश के यार ठीक है भेड़ बकरियाँ हैं मेरी, मैं एक गाय बेचूंगा उससे बस मेरा जो है ना खाना खाना आ जाएगा, मैं सुकून में चल रहा हूँ, नहीं, उसको अब कपड़े भी अच्छे खूबसूरत चाहिए, उसको मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, उसको पबजी भी खेलनी है, उसको पबजी की स्किन्स भी खरीदनी है, उसने बहुत सारी चीज़ें करनी है और इस पर कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि अब उसको एक एक वॉन्ट डेवलप हो गई है जिसको अब वो नीड्स में बदलना चाह रहा है। जैसे जैसे सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं उनकी नीड्स जो हैं वो भी ऑप्टिमाइज होती हैं, वो भी ग्रो करती हैं। तो अब हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म क्योंकि एक्सेस आ गया है कि आप देख रहे हैं कि यार लोग किस तरह रह रहे हैं, तो जहाँ आम गाँव के अंदर पहले खाना जो है ना बस आप बनाते थे खाते थे और बाकी एक्स्ट्रा सड़ जाता था, अब वो कह रहा है यार मुझे फ्रिज भी चाहिए, अब वो कह रहा है मुझे इस्त्री भी चाहिए, अब वो कह रहा है कि मुझे ट्रैवल करने के लिए साइकिल भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन किस स्केल के ऊपर वो बंदा है। सिर्फ आप हाउस होल्ड कंज्यूमर आइटम्स की बात करें ना तो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान डिड नॉट हैव कंज्यूमर आइटम्स 10-15-20 ईयर्स अगो, और पिछले 20 साल के अंदर ये तमाम घराने जो हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता पंखा, फ्रिज, इस्त्री, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये एंटर हुए हैं और अब इनकी ये रिक्वायरमेंट्स बनना शुरू हो गई हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और वो तमाम आपको अब चाहिए वन वे और दी अदर, तो आप खुद तो नहीं वो सब तमाम चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते, आप चाहें भी तो नहीं कर सकते, उसका कुछ ना कुछ तो बाहर से आना ही आना है, रॉ मटेरियल आना है, या काफ़ी दफ़ा तो स्पेशलाइजेशन इतनी ज़्यादा होती है बाहर के ममालिक में कि वहाँ से मंगवाई भी चीज़ सस्ती पड़ती है, आपकी स्पेशलाइजेशन किसी और चीज़ में, आप वो चीज़ उसको बेचते हैं, आप उससे वो स्पेशलाइज चीज़ खुद खरीद लेते हैं और सिस्टम चल जाता है। तो ये जो आपने ट्रेड करनी है ये डॉलर में करनी है, जिस तरह जब आप घर में होते हैं तो घर में आपने बेशक एक पर्ची सिस्टम लगाया हुआ है कि यार कजन्स आपस में हैं, मैंने यार तुम्हारे कपड़े धो दिए, मैंने तुम्हारा बिस्तर बना दिया, तो मैंने पर्ची दे दी तुम्हें कि यार ये लो 1 टोकन तुम्हारा, अब तुम ये टोकन रिडीम कर सकते हो बाद में, लेकिन घर से बाहर आपको रुपया चाहिए, राइट? वो रुपया बाहर वाला रुपया मांगता है, वो उसको कुछ और नहीं समझ आता कि पर्ची वर्ची भाई तुम्हारे घर का मामला है। इसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर रुपए शुपए कोई नहीं मांगता, वो डॉलर मांगता है क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया की करेंसी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अच्छा, अब डॉलर कहाँ से आता है? जैसा मैंने आपको बोला कि डॉलर जब आप कुछ बेचते हैं तो उससे आपको डॉलर मिलता है, उस डॉलर को आप इस्तेमाल करके कुछ खरीद सकते हैं। अब बेशक आप इससे गुड्स बेच रहे हो, जैसे कि आप कपड़े बेचते हैं पाकिस्तान में, टेक्सटाइल या सर्जिकल गुड्स होती हैं सियालकोट की, या फुटबॉल्स होती हैं सियालकोट की, या आप सर्विसेज बेच रहे हैं कि आप जो है वो आईटी की सर्विसेज बेच रहे हैं, या आपके लोग जो हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, घर से बाहर पाकिस्तान से बाहर निकल के वो काम कर रहे हैं और काम करके फिर वो पैसे वापस घर लेकर आते हैं और घर वाले जो हैं फिर वो सर्वाइव करते हैं उससे। तो इसमें डॉलर कमाने के तीन तरीके हैं। पहला ये कि आपने प्रोडक्ट्स बेची, दूसरा ये कि आपने सर्विसेज बेची, तीसरा ये कि आपने ह्यूमन कैपिटल को बाहर भेजा और वो आपको रेमिटेंस भेज रहे हैं एज ओवरसीज पाकिस्तानीज। अच्छा, ये कमाने के तरीके हो गए। फिर इसके बाद दो और तरीके होते हैं जिससे आप डॉलर कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में या अपने घर में लेकर आ सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप कोई कर्जा दे दें, आपके घर में साथ वाले अंकल आए दावत पे, आपने उनको बोला कि देखें जी हमारे बच्चे जो हैं इनकी रात को जो है ना बड़े मुश्किल होता है, इनसे पढ़ाई नहीं होती, तो अगर आप थोड़े से पैसे दे दें तो हम जो है ना इधर लाइटें वगैरह लगवा देंगे, तो फिर ये जब पढ़ लेंगे तो ये नौकरी पे लगेंगे तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। तो वो साथ वाले अंकल कहते हैं यार जबरदस्त है, ठीक है चलो मैं इसको पैसे दे देता हूँ। तो एक तो वो आपको पोटेंशियली डॉलर मिल सकता है। अब ये जब साथ वाले अंकल आ रहे हैं तो आप उनको, अगर आप ऐसे किसी से सोचें अपने घर में आपके कोई बंदा आ रहा है, वो आपको, आप उससे कह रहे हैं यार मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, वो आपसे सवाल करेगा क्यों चाहिए भाई, क्या करना है तूने 2 लाख रुपये का? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उसको कहोगे 2 लाख रुपये चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे सर का दर्द है, मैंने उसको किधर खर्च करना है। नहीं, वो आपसे पूछेगा, नॉर्मली देख लें, आप अपने दोस्त से भी बोलेंगे ना कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो आप उसको बोलेंगे कि यार भाई मेरा ना ये मसला आ गया, मसला बताएंगे, फिर आप कहेंगे कि इसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए और मैं इतने अरसे तक लौटा दूंगा। तो पाकिस्तान में जब हम IMF के पास जाते हैं, जब हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, हम कर्जे लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी शरायत आती है। जो हम कहते हैं ना कि यार IMF जो है वो बड़ी गंदी शरायत लेकर आता है, वो शरायत इस वजह से लेकर आता है बिकॉज आप किसी से भी, IMF तो चलें बड़ा लेट से के बुरा आदमी है, यहूदी एजेंट है, बट आप अपने घर में सोचें कि आप किसी से पैसे मांगेंगे तो उसको आप हमेशा बताएंगे कि यार मुझे क्यों चाहिए ये पैसे, ये मैं पैसे किधर लगाऊंगा, और फिर आप उसको कुछ शरायत देंगे कि यार भाई तू मुझे पैसे दे दे, प्रॉमिस 30 दिन में तुझे लौटा दूंगा, और उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि यार मुझे इसको पैसे देने या नहीं देने, राइट? तो सिमिलरली पाकिस्तान का भी यही हाल है। और फिर लास्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके घर पे कोई लेट से खाला मामू जो अमेरिका में रहते हैं, वो कभी आपके वापस आए, उन्होंने आके देखा कि यार ये जो घर है, इस घर के अंदर जो बच्चे हैं ना उनका तो बड़ा सीन है, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो बड़े लाइक हैं और वो जो है ना आगे जाके बड़ा फ्यूचर में जो है बड़े अफसर बनेंगे, तो आप सोचते हो कि यार अगर मैंने ना इवेंचुअली कल को इनसे अच्छी दोस्ती यारी भी रखनी है, फिर ये है कि ये जब बड़े बड़े अफसर लगेंगे तो ये मेरे काम भी निकलवा सकते हैं, तो फिर आप जाके इन्वेस्ट करते हो उस घर के अंदर, आप जाते हो जाके उनको एक सोफ़ा लेके दे देते हो, आप जाके एक टीवी लेके दे देते हो जिससे उनके दिमाग में ये हो कि यार ये देखो कितना अच्छा आदमी है, और फिर आपको वो रिटर्न इवेंचुअली जो है देंगे। तो ये आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्री का पैसा नहीं है, कोई आपके चाचू फ्री में आपको तोहफे नहीं देते। हर इंसान, हर कम्युनिटी, हर नेशन, हर बैंक, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अच्छा बुरा, मुसलमान यहूदी, हर कोई अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है और उस इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर वो आके आप में इन्वेस्ट करता है। अच्छा जी, अब लोन्स की थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि लोन्स की बड़ी बात होती है पाकिस्तान में। ओए जी कर्जा चढ़ गया, ओए जी बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ओए जी हम तो जो है अब वो लोन्स चुकाने में लगे हुए हैं, जी लोन्स नहीं चुकाया तो डिफॉल्ट हो जाएगा, और डिफॉल्ट का आपने बड़ी दफ़ा सुना पिछले कुछ अरसे में कि यार पाकिस्तान तो बस डिफॉल्ट होते होते रह गया। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, थोड़ा इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। पहला तो ये कि हफीज़ पाशा साहब जो कि एक नामवर इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनके बकौल अगले 3 साल के अंदर पाकिस्तान को $35 अरब $35 बिलियन लोन पेमेंट्स की मद में क्रेडिटर्स को वापस करने हैं। मतलब कि आपने लोन लिया हुआ था, उस लोन में से जो टोटल अमाउंट ऑफ लोन है उसमें से $35 अरब का लोन आपने लोगों को वापस करना है अगले 3 साल में। अब अगेन इसको आप अपने हिसाब से सोचें, आपने किसी बंदे से पैसे लिए हुए, आपने उसके बाद कुछ टर्म्स डिसाइड की थी, अब आप उसमें हर थोड़े से बाद पैसे दे देते हैं। कभी कभार आपने दरमियाने काफ़ी दफ़ा ये भी किया कि आपने कहा यार भाई इस साल नहीं हो सकता, अगले साल मैं तुझे दे दूंगा, या इस महीने नहीं हो सकता अगले महीने में तुझे दे दूंगा, लेकिन बस इस महीने जाने दे। उसने आपकी बात भी सुन ली, बड़ी दफ़ा उसने ना रोल ओवर किया, जिसे कहते हैं ना कि लोन रोल ओवर हो गया। वो बेसिकली पाकिस्तान जाता है और जाके कहता है कि यार भाई इस साल बड़ा हालात मुश्किल हैं, पता है वो बेगम ने नए कपड़े भी मांग लिए हैं, सारा कुछ है, ईद भी आ रही है, तो मैं अगले महीने तेरे चुका दूंगा, मुझे ये महीने का ग्रेस पीरियड दे दे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने दोस्त को बोलते हैं ना यार अगले महीने, तो होता क्या है कि एक तो आपकी लोन की अमाउंट बढ़ती रहती है, जाहिर है क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। दूसरा, इवेंचुअली जिस बंदे ने आपको लोन दिया हुआ है उसकी भी बस हो जाती है, वो कहता है भाई तू मेरे पैसे वापस कर, मैंने आगे अपने काम भी करने हैं, मेरी बेगम को भी कपड़े चाहिए, मैं क्या तेरा वेट करता रहूं। तो उसके ऊपर जो आपने फाइनल डेट दी कि यार अच्छा चल ठीक है यार परेशान ना हो, मैं तुझे 10 तारीख को प्रॉमिस वापस कर दूंगा, और जब 10 तारीख को आप पैसे ना दें तो क्या होगा, आपके घर वो बंदे भेजेगा, वो घुसेगा घर के अंदर, वो बदतमीजी करेगा, वो कहेगा वे पैसे दे मुझे, और उसके बाद पूरे मोहल्ले में आप जलील होंगे, मोहल्ले को पता लग जाएगा, बरादरी को पता लग जाएगा कि यार ये कामरान जो है ना, कामरान पैसे नहीं देता, इससे कभी फाइनेंशियल डीलिंग नहीं करनी, ये 2 नंबर आदमी है। फिर आप जाएंगे जाके लेजिटिमेट चीज़ भी कर रहे होंगे ना, तो मार्केट आपको यूँ घूम के देखेगी कि यार ये वैसे दो नंबर आदमी है, इसने अशफाक के साथ बड़ा बुरा किया था, वो पैसे वापस नहीं करता, यू नो लेन देन में पैसों के मामले में ये थोड़ा दो नंबर आदमी है। इसी तरीके से पाकिस्तान भी जब एक मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो डिफ़ॉल्ट से उसका कॉन्फिडेंस ख़राब होता है, डिफ़ॉल्ट से लोग उसको पैसे देना बंद कर देते हैं, लोग उससे ट्रेड करना बंद कर देते हैं। जो बेइज्जती, जो ख्वारी, जो सब कुछ एक आम आदमी के साथ होता है जब वो पैसे नहीं देता, उसी तरीके से मुल्क के साथ भी वही होता है। अब इसमें हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, 35 अरब डॉलर हमने वापस करना है, तो हमने देखना है कि 35 अरब डॉलर हम लाएंगे कहाँ से। फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट करेंगे, रेमिटेंस आएगी हमारे पास, फिर हमारे कोई खर्चे होंगे जो हमारे अखराजात हैं वो हम ऐड अप करेंगे, फिर हम कहेंगे कि अच्छा यार किसी ने हमें साइड से मजीद लोन दे दिया वो कितना होगा, फिर हम साइड पे देखेंगे कि किसी ने अगर आके इन्वेस्ट कर दिया, किसी को लगा कि यार इनका सीन सही है, ये आप सही राह पे गामजन है तो अब हम इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो तमाम मिलाकर फाइनली हमारे पास अमाउंट आएगी कि कितना पैसा हमारे पास एक्सेस है जो कि हम लोन रीपेमेंट्स में लगाएंगे। अब पाकिस्तान में हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट होता है, यानी कि हमारे जो अर्निंग्स हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस से आती हैं और जो हमारे अखराजात हैं जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं, मतलब हम पैसे देकर जो चीज़ें खरीदते हैं दुनिया से, उसमें हमेशा साल के आखिर में अखराजात ज़्यादा होते हैं, हम अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो वहाँ पर करंट अकाउंट डिफिसिट आता है। अब कभी ये जो है 20 अरब डॉलर तक चला गया कि एक साल में हमने इतना कमाया नहीं जितना हमने खर्च कर दिया, 20 अरब डॉलर्स ज़्यादा खर्च कर दिए कंपेयर टू जितने हमने कमाए थे। और कभी कभार ऑन एवरेज इसी तरह होता है, 2-4-6 अरब डॉलर हमारा जो है वो करंट अकाउंट डिफिसिट होता है और उसको हम फिर मैनेज करते हैं, क्योंकि अब जाहिर है आप कह रहे हैं कि यार मेरे पास पैसे आ रहे हैं, उस पैसे से खर्चे मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर है घर के अंदर जितना पैसा आएगा उतना ही मैं खर्चे करूँगा ना, तो उसके लिए आप जाते हैं और जाके लोन्स लेते हैं और लोन्स को यूज़ कर करके आप अपने वो खर्चों का जो एक्सेस स्पेस है, जो 4-6-8-20 बिलियन डॉलर आपने एक्सेस खर्चा किया हर साल, वो आप लोन्स की मद में पूरा करते हैं। अब पिछली गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट के बाद एक चीज़ तो कर ली, उसने अखराजात को मैसिवली कम किया, उसने इंपोर्ट्स को रोक दी, उसने कहा यार इस वक्त इंपोर्ट्स नहीं होंगी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, डॉलर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, हमारे रिजर्व्स में जाएगा क्योंकि रिजर्व्स इवेंचुअली लोन पेमेंट में इस्तेमाल होंगे, लेकिन वो रिजर्व्स इनफ नहीं है। मैंने आपको अगेन बोला कि 35 अरब डॉलर का आपने पूरा करना है, हम तो इस पॉइंट पे आ गए ना कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स सेम हो गई, कम नहीं हुई इंपोर्ट्स, सेम हो गई, तो यानी कि जितना कमा रहे हो उतना खा रहे हो, चलो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थोड़ी सी, लेकिन जो लोन की पेमेंट है उसको कैसे पूरा करें? अब अगेन उसको पूरा करने के दो तरीके हैं, तो पहला लोन, दूसरा इन्वेस्टमेंट। पहले की बात करते हैं, IMF के पास जाना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हमें फ़ौरन से पेशतर लोन चाहिए, जिस लोन को हम इस्तेमाल करके अपने पुराने लोन चुकाएंगे। हम कोई नया काम नहीं कर सकते, हमारे पास इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है। अभी हम ये कर रहे हैं कि यार वो अशफाक साहब के पैसे लौटाने हैं, वो गले को आए हुए हैं, तो शहबाज साहब से पैसे लो, तो किसी तरीके से अशफाक साहब को लौटा दो, फिर देखी जाएगी कि शहबाज साहब से जो नई टर्म्स हैं 3-4-5 साल में उनको पैसे वापस करने हैं, वो हमने किस तरह करना है वो सोची जाएगी। तो IMF के पास पहली फुर्सत में हमने जाना है। दूसरा, IMF के पास ही जाना ज़रूरी क्यों है? चाइना के पास भी जा सकते हैं, सऊदी के पास भी जा सकते हैं, IMF के पास जाना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जब आप बेइज्जत हो जाते हो ना मार्केट के अंदर, तो आपको कोई बड़ा नाम चाहिए होता है, वो बड़ा नाम आपको आके वापस ट्रस्ट करेगा ना, तो फिर मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि यार ठीक है चलो वो बड़े साहब ने बोल दिया है कि ये ओके है, तो फिर हम भी इसका तो ओके हो जाते हैं। वो चीज़ आपकी IMF है, IMF कॉन्फिडेंस लेकर आती है। IMF की इस वक्त डील 5-7 अरब डॉलर से ज़्यादा की नहीं होगी आपको, और वो भी 5-7 अरब आपको ओवर 3-4-5 ईयर पीरियड मिलेगा, तो हमें तो 35 अरब डॉलर चाहिए, तो वो 35 अरब IMF से नहीं आ रहा, IMF सिर्फ आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी दे रहा है और साथ वो शरायत दे रहा है, वो कह रहा है कि यार अच्छा अगर तुमने ये पैसे वापस करने हैं ना, तुम्हारे तो बड़े हालात ख़राब हैं, तुम हर दफ़ा दो नंबर आदमी हो, तुम हर दफ़ा डिफॉल्ट करते हो, तुम हर दफ़ा जाके कहते हो कि सर अगली बार लौटा दूंगा, परसों लौटा दूंगा, अगले महीने लौटा दूंगा, तो ज़रा मेरे साथ बैठो, मुझे ज़रा बताओ कि तुम्हारे घर का माहौल क्या है, तुम पैसे लगा किधर रहे हो, तुम अपने खर्चे किस तरह करते हो, तुम्हारे से तो मैनेज होती नहीं है पैसे, तो मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ और मैं तुम्हारे सारे पैसों को मैनेज करके एक ऐसा सेटअप तुम्हारे लिए बताता हूँ ताकि तुम अपने पैसों को ऐसे इस्तेमाल करोगे ऐसे से तुम्हारी अर्निंग्स बढ़े, और जब अर्निंग्स बढ़ेंगी तो तुम मेरे पैसे भी लौटाओगे और तुम मार्केट के पैसे भी ऐसे ऐसा लौटा दोगे। ये वो बेसिकली IMF की शरायत हैं, जिन शरायत को आप एग्री करते हैं तो आपको IMF पैसे देता है, और इससे एक कॉन्फिडेंस जाता है बाकी लोगों में कि यार अच्छा IMF को इसने मनवा लिया, इसका मतलब है यार अब फाइनली ना घर का निज़ाम ठीक ही होगा, तो इस वजह से मैं भी इसको पैसे दे देता हूँ, मैं IMF को ट्रस्ट करके इसको पैसे दे देता हूँ। तो 5-7 अरब आपको IMF से मिलेंगे, उसके बाद फिर आप कुछ अपनी ब्रादर नेशंस के पास जाएंगे, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट में UAE वगैरह, उनसे आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं, फिर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हो गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और इस तरह के हो गए जिनसे आप पैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोन्स की मद में। याद रखिएगा नया लोन जो आने वाले वक्त में आ रहा है वो ज़्यादातर पुराने लोन को चुकाने के लिए आ रहा है, क्योंकि 35 अरब डॉलर आपने अगले 3 साल में वापस करने हैं, ये बार बार अपने दिमाग में रखिएगा। तो जो लोन्स आ रहे हैं उन लोन से कोई बहुत वारे नियारी नहीं होने वाले, वो उन लोन से आपकी कोई हालात नहीं बदलने वाले, वो लोन सिर्फ इस वजह से हैं कि यार जो हालात इस वक्त हैं वो हालात मेंटेन हो सकें उससे बुरे हालात ना जाए। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने सुना होगा, पिछली गवर्नमेंट डिक्लेयर कराई थी SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। अब मैं इसके स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा, उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ कि जब आपको जाहिर है ये समझ आ गया कि यार तनख्वाहें मैं अपनी बढ़वा नहीं सकता, यानी कि जो मैं कमा रहा हूँ, जो मैं नौकरियां करके कमा रहा हूँ, वो तो अभी मैं फिल वक्त नहीं बढ़ा सकता। मैं ओवर टाइम लॉन्ग पीरियड में मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो फौरन पैसे चाहिए, तो मैं एक तो लोन लूंगा जितना मैं ले सकता हूँ, और जो बाकी है उसमें मैं घर का माल बेचूंगा कि यार अच्छा चलो ये सोफ़ा है, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा लोग नहीं बैठते, चलो इसको बेच दो। अच्छा यार वो उधर जो है ना वो गाड़ी खड़ी हुई है, वो गाड़ी जो है वो ऐसी पड़ी रहती है, उसकी मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा आ जाता है, इस्तेमाल तो हो नहीं रही है, चलो उसको बेच दो और देखो क्या मैं बेच सकता हूँ। तो इसी तरीके से पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो ये फिगर आउट कर रहा है कि यार कौन सी ऐसी चीज़ें मैंने अच्छे टाइम के ऊपर बड़ी बड़ी महंगी महंगी बना ली थी, जिसका मुझे सच्ची बात है कि इस वक्त ना फ़ायदा हो रहा है, ना मेरी औकात है कि जो मेरे हालात हैं उसके हिसाब से मैं इस तरह की चीज़ रखूं, थोड़ी शर्म आती है। तो उसी तरीके से जो है पाकिस्तान अब उस जोन में कि वो जा रहा है और जाके कह रहा है कि अच्छा यार PIA बहुत महंगा है, मैं सिर्फ उस शशके को मेंटेन करने के बहुत सारे अरबों रुपया खर्च करता हूँ सालाना, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ये PIA जाके किसी बाहर के बंदे को बेचूं और उससे डॉलर जो है वो मेरे पास आएगा, जो कि अगेन मेरा जो डिफिसिट है उसको फाइनेंस करेगा। तो इसी वजह से PIA को बेचने की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेचने की बात हो रही है, OGDCL और इस तरह की जो ऑयल कंपनीज हैं उनको बेचने की बात हो रही है, फिर उसके बाद एयरपोर्ट्स को बेचने की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारे एरियाज़ में बेचने की बात हो रही है। वो बेचने के डिफरेंट तरीके होते हैं, एक होता है कि यार आप डायरेक्टली चीज़ को बेच दो, एक होता है कि आप उसके ऊपर टोल लगा दो और टोल जो है उसका पैसा वो बाहर वाले ले जाएं, बट वो बेसिकली इवेंचुअली इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंट्री के अंदर आके। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने डॉलर्स की है और उन डॉलर्स को इवेंचुअली गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी, चाहे उसको लोन चुकाना हो या चाहे उसने डेवलपमेंट करनी हो। तो SIFC का जब भी नाम आएगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा उसमें प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, उसमें ये हो रहा है पहली फुर्सत में, शॉर्ट टर्म में हमारे घर में जो हमने अच्छे वक्तों में आके फालतू के खिलौने खरीद लिए थे ना, वो अब हम बेच रहे हैं ताकि हम इमीडिएटली कुछ पैसे आ जाएं। दूसरे लेवल पे जो नाम आएगा वो ये आएगा कि यार अच्छा घर के अंदर ना पीछे जो है वो कोई लॉन शॉन पड़ा हुआ था और वो लॉन जो है वो ख़राब था, घर में तो कोई ऐसा है नहीं जो काम का उसके ऊपर जो है ना वो खेती बाड़ी कर ले, तो मैं साथ वालों के नौकर को कहता हूँ कि यार तू एक काम कर, तू आ और इधर आके जो है ना खेती बाड़ी स्टार्ट कर, जो तू अनाज उगाएगा उसमें से कुछ मुझे दे, कुछ बाहर ले जा, ठीक है। तो ये एक अगेन इन्वेस्टमेंट का एक और तरीका है कि जिसके अंदर हम जाके, तो ये इतने शॉर्ट टर्म नहीं होगा, इसमें जो इन्वेस्टर है वो आके देखेगा, समझेगा, आइडेंटिफाई करेगा और फिर उसमें जो मुल्की हालात हैं वो भी इम्पैक्ट करेंगे कि यार आपके अगर उस लॉन के अंदर जहाँ पर आपने खेती बाड़ी करनी है वहाँ पे आपके बच्चे खेलते रहते हैं हर वक्त और वो रोन देते हैं उसका जो भी फसल उग रही है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करें उसके अंदर। तो आपने थोड़ा डिसिप्लिन भी लेकर आना है, आपने सिक्योरिटी भी बनानी है मुल्क के अंदर। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मीडियम टर्म में शायद अगले 2-2.5 साल के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इवेंचुअली इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, जिसमें आप जो सुन रहे हैं जब SIFC की बात होती है तो सऊदी ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है कि वो 10 अरब डॉलर की एक ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाएंगे। अब वो 10 अरब डॉलर ये नहीं हो रहा कि वो बस 10 अरब डॉलर दे दिए उन्होंने और जी अल्लाह खैर से अल्लाह, उन 10 अरब डॉलर्स में बहुत सारा तो बाहर की मशीनरी आ रही है, वो तो आपको डॉलर नहीं मिल रहा, लेकिन उसमें डेफिनेटली एक साइजेबल अमाउंट आपको आएगी और वो लॉन्ग टर्म आएगी, वो आहिस्ता 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 जैसे जैसे वो फैक्ट्री सैंक्शन होगी फिर वो डेवलप होगी तो वो पैसा आपको मजीद मिलेगा। फिर मिनरल्स की बात हो रही है कि बलूचिस्तान में बहुत सारा मिनरल है, वो इवेंचुअली निकलेगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ये 5-10 साल में आपको उसका पैसा निकलना शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट का पैसा, और इवेंचुअली जब वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो जैसे मैंने आपको ना अनाज वो उगाएगा तो अनाज आपको जो मिलना शुरू करेगा वो सिर्फ ये नहीं है कि वो आपके लॉन में आके जो खेती बाड़ी कर रहा है तो उससे जो वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, बल्कि वो जो अनाज निकाल रहा है उससे भी आपको फ़ायदा हो रहा है। तो वो लॉन्ग टर्म आउटलुक है कि वो ऐसा ऐसा पहले पैसा लगेगा, फिर पैसा लग के उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, फिर इन्वेस्टमेंट होकर उससे प्रोडक्टिविटी होगी, जॉब्स बनेंगी और फिर जॉब्स बन के इवेंचुअली वो माल पूरी दुनिया में बिकेगा और उससे आपको एक अमाउंट मिलेगी। जैसे कि बलूचिस्तान में जो गोल्ड की कान है उस पर एक अग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि यार जो कंपनी उसमें माइनिंग कर रही है एक तो वो सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रही है, फिर वो जो गोल्ड निकल रहा है उसमें एक सर्टन अमाउंट वो अपने पास लेके जा रही है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट को उसका पैसा मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जाहिर है आपको मैंने बताया कि हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि आपके पास डॉलर नहीं है, आपने पैसा चुकाना है, तो गवर्नमेंट के पास और भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं इसको कंट्रोल करने के। उसमें से एक है जी आप इंपोर्ट्स को कट करो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल से कट हो रही थी, अब वो बर्दाश्त से बाहर होना शुरू हो गया है वो जो कटिंग है। और कटिंग से होता ये है कि यार शॉर्ट टर्म में आप कट तो कर लेते हो, आपके नंबर्स ओके हो जाते हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है, आपका माल जो बाहर से आ रहा था अब वो माल सिर्फ और सिर्फ वो बाहर से अंदर नहीं आ रहा, वो 10,000 डिफरेंट तरीकों से वो बिक रहा होता है, उसके पीछे एजेंट्स होते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसका सब कुछ होता है। वो तमाम लोग अब फारिग बैठे हैं, यानी कि जॉबलेसनेस हो रही है, ठीक है। तो जॉबलेसनेस हो रही है उससे लोकल इकोनॉमी को इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि आपने माल बनाना माल मंगवाना छोड़ दिया अब सब ओके हो गया, जैसे जैसे आपने माल मंगवाना रोका आपकी एक लोकल पूरी इकोनॉमी थी जो उसके साथ ड्राइव हुई हुई थी, वो इकोनॉमी अब जॉबलेस हो रही है, और चूंकि अब वो जॉबलेस हो रही है तो वो जो ख़रीदारी कर रहे थे अब वो नहीं कर पा रहे, तो उससे लोकल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो इम्पोर्ट को कंट्रोल करना और इम्पोर्ट को किल करने वाले जो सिचुएशन है ना, वो सबसे ड्रास्टिक सिचुएशन है, और वो सिचुएशन जो है वो डायरेक्टली आपकी पॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट करती है, वो डायरेक्टली रिजेंटमेंट क्रिएट करती है, वो डायरेक्टली फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। अच्छी पॉलिसी हो बुरी पॉलिसी हो, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, काफ़ी दफ़ा रिक्वायर्ड होता है कि ये करना है, लेकिन उसके आउटकम्स मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे इंपोर्ट्स को, गवर्नमेंट छोड़ दे, वो कहे कि यार तुमने जो मंगवाना है मंगवाओ, मेरे सर का दर्द नहीं है, लेकिन डॉलर जो है ना वो मार्केट डिफाइन करेगी। यानी कि क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था इम्पोर्ट के लिए आपको डॉलर्स चाहिए, तो डॉलर्स ज़ाहिर है ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि मार्केट में एक फाइनाइट एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉलर्स हैं और रुपया बहुत ज़्यादा है, तो अगर बहुत ज़्यादा रुपया थोड़े से डॉलर्स को चेस करेगा तो डॉलर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और डॉलर की प्राइस बढ़ेगी। गवर्नमेंट क्या करती है, वो चाहती है कि यार डॉलर की प्राइस कम रहे ताकि जो है ना लोगों के ऊपर इतना इंपैक्ट ना पड़े, तो हम डॉलर और इंपोर्ट्स दोनों को कंट्रोल कर लेंगे। हम डॉलर को भी एक सर्टन अमाउंट पे स्टैटिक रखेंगे, 280 पे हमने स्टैटिक रख दिया, और हमने कहा कि यार डॉलर की डिमांड किस तरह मारनी है। हमने देखा कि यार डॉलर से जो है ना वो लोग साइकिलें खरीदते हैं, यार साइकिल पे बैन लगा दो, वो डॉलर पे गाड़ियां खरीद रहे हैं, यार गाड़ियों पे बैन लगा दो, बाकी चीज़ें खरीदते रहो कोई मसला नहीं है, तो ओवरऑल डिमांड किल हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट चूज़ कर रही होती है किस इंडस्ट्री पे कंट्रोल करना है, किस इंडस्ट्री को लगाने देना है, किस इंडस्ट्री को मना करना है। ऑन दी अदर हैंड जब गवर्नमेंट कहती है कि यार मार्केट डिफाइन करेगी, आम आदमी का ये राइट है कि उसने दिल कर रहा है, उसने कोई चीज़ खरीदनी है, वो शौकीन मिजाज है, वो खरीदे जितने की भी खरीदनी है, तो फिर वो फ्री मार्केट होता है। फिर जब आपके इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो ऑटोमेटिकली मार्केट इक्विलिब्रियम ढूंढेगी, तो डॉलर की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। जब डॉलर आपका कम आ रहा है, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली डॉलर की प्राइस एक ऐसी जगह पे चली जाएगी जिस पे लोग खुद कहेंगे यार पता है बड़ा महंगा हो गया, मुझे खरीदना ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने कंट्रोल कोई नहीं किया हुआ, लेकिन लोग खुद कहेंगे यार छोड़ो यार अभी इसको खरीदने का फायदा नहीं है। तो उससे भी आपकी जो एक्सेस इंपोर्ट है वो खत्म हो जाती है और आप इक्विलिब्रियम पे आ जाते हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। लेकिन इससे एक नुकसान होता है, वो नुकसान ये होता है कि इससे पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। मसलन बहुत सारे एसेंशियल एरियाज हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गई जो मेडिसिन बनाती है, या बिजली हो गई, एनर्जी हो गई जो कि हम सब लोगों के घरों में चलती है, उसकी भी प्राइस बढ़ती है। अब हो क्या रहा है, वो जिस गाड़ी वाले को आपने रोकना था जो कि हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर एक ही दफा में उड़ा रहा है, उसकी प्राइस ऑप्टिमाइज करने के खाते में आपने 10 रुपए की पैनाडोल को 50 रुपए की पैनाडोल बनवा दिया, जस्ट बिकॉज आपने ओवरऑल मार्केट को खुला छोड़ दिया। अब क्या सही है क्या गलत है, अगेन मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन ये कि ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और जैसे कि मैं बारहा इस चीज़ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर पॉलिसी डिसीजन में कोई प्रो होगा कोई कॉन होगा, कि कुछ लोगों को फायदा होगा कुछ लोगों को नुकसान होगा, कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स होंगे कुछ बुरे इम्पैक्ट्स होंगे। ये जो पाकिस्तान में हमारी एक सोच थी जो हमारे सियासतदानों ने हमारे दिमाग में डाल दिया कि अगर ये कर लोगे तो सबकी इंजॉयमेंट हो जाएगी, सब फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। आप अगर अगेन घर की मिसाल लें, आप अगर घर में अब ख्याल कर रहे हैं ना, आपके एक चाचू आए हैं और वो कह रहे हैं कि तुम सब लोग अय्याशी करते रहते थे, अब तुम लोगों का बाहर खाना बंद, अब रात को जागना बंद, लाइटें बंद करो, बिजली बचाओ, एसीज बंद, सब लोग एक कमरे में पंखा चला के सोया करेंगे, सुबह स्कूलों में जाओ काम पे जाओ मेहनत करो तनख्वाहें बढ़ाओ हम कर्ज उतारेंगे, ये बहुत अच्छा है, ये वाले चाचू बहुत अच्छे हैं। हर बंदा कहेगा यार ये वाले चाचू बहुत सही सेट जा रहे हैं क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म की समझ है। ये प्रॉब्ली ना बाहर से आए हैं चाचू, ये अमेरिका से होकर आए हैं, तो इस तरह के चाचू आते हैं और उन्होंने एक विजन होता है उनके अंदर। हम मोहल्ले में ऐसे लोगों कहते हैं यार बड़ा विजनरी आदमी है। पाकिस्तान में अब इसमें क्या हुआ है, जो घर के लोग हैं वो उनको बड़ा प्रॉब्लम है कि यार क्या बकवास है, चाचू आए हैं ना वो बाहर जाने देते हैं ना वो बाहर खाना मंगवाने देते हैं, रात को हम लेट नाइट जागते थे उन्होंने वो भी बंद कर दिया, यार मुझे अब गर्मी में पंखे में सोना पड़ेगा, यार क्या बकवास है यार क्या ख्वारी है यार अजीब है यार ये चाचू। लेकिन आप जो सुन रहे हैं जो आप देख रहे हैं साइड से, आपको तो यही समझ आएगी ना कि यार चाचू स्मार्ट है या वो बच्चा स्मार्ट है जो रो रहा है कि यार मेरा एसी बंद करवा दिया इन्होंने, मेरा ये करवा दिया मेरा वो करवा दिया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पॉलिसी डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं जिनमें शॉर्ट टर्म में कुछ अरसे के लिए हालात ख़राब होंगे, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली हालात बेहतर हो जाएंगे। तो जो चाचू जो कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म पे आपका एसी बंद करवा रहे हैं, शॉर्ट टर्म पे आपका खाना बंद करवा रहे हैं, शॉर्ट टर्म पे आपको काम पे लगा रहे हैं, लेकिन चाचू को ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर ये बच्चे आज इन कामों पे लग गए, अगर उन्होंने तालीम हासिल कर ली, तो कल को जब ये नौकरियों पे लगेंगे ना, तो आज जो ये कर्जा ले लेके 10-10 हज़ार रुपया महीने का खर्च कर रहे हैं, कल अपनी नौकरी में अपनी इज्जत के साथ 50 हज़ार रुपये कमाएंगे, और 50 हज़ार रुपये जब खर्च करेंगे तो इनको एसी भी मिल जाएगा, इनको बाहर खाना भी मिल जाएगा, इनको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इज्जत के साथ मिलेगा। तो आप चाचू को समझोगे, आप उनको ह्यूमनाइज़ करोगे, आप कहोगे यार चाचू की बात समझ आती है। इसी तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हमें चाहिए जो कि थोड़े अरसे के लिए आपको कोफ्त भी देंगी, थोड़े अरसे के लिए आपको पिंच भी होगी, थोड़े अरसे के लिए आप परेशान भी होगे, लेकिन वो पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म में आपके फायदे में जाएंगी। अच्छा खैर, वीडियो लंबी हो रही है और मैंने अभी ये तकरीबन समझ लें कि मैं अभी आधे पेज तक पहुंचा हूं और मैंने तकरीबन 3 से 4 पेजेस में डिफरेंट हेडिंग्स में बात की लिखी हुई है। तो मैं चाह ही रहा हूं कि यार मैं 30-35 मिनट से ज़्यादा की अब वीडियोस ना डालूं, क्योंकि फिर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वाली वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। इसका मकसद मेरा लार्जली ये था कि मैं पाकिस्तान के एक तो जो इकॉनमी है उस इकॉनमी को ह्यूमनाइज़ करके, उस इकॉनमी को सिंप्लीफाई करके, उस इकॉनमी के अराउंड एक कनेक्ट इस्टेब्लिश कर लूँ आपके दिमागों में, जिसको यूज़ करके आने वाले दिनों में जो भी मैं बात करूँगा आपने कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को दिमाग में रखना है। आपने कॉन्स्टेंटली सोचना है कि यार अगर मैं होता इस जगह के ऊपर या मेरे घर में ये हो रहा होता तो उसमें हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उस चीज़ को समझाना आज का मकसद था। थोड़ा सा मैंने कहा आपको मैं एक्सटर्नल भी बता दूं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम सुनते हैं, करंट अकाउंट डिफिसिट, तो ये लोन्स क्या होते हैं, IMF क्या होता है, ये सारा कुछ क्या होता है, तो उसकी भी थोड़ी सी मैंने आपको सेंस दे दी। यहाँ पर मैं इसको रैप अप करूँगा। आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको पाकिस्तान के जो लोकल लोन्स हैं, जो हम बात करते हैं फिस्कल डिफिसिट, जो मैनिफेस्टो में बार बार आ रहा था, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो किस तरह से चलता है, उसकी बात करेंगे। हम डॉलर प्राइस की बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा शोर मचता है कि यार ये डॉलर क्यों, वही डॉलर 300 का हो गया, वही डॉलर 350 का हो गया, वही महंगा डॉलर हो गया इसका मतलब है तेरी हुकूमत फारिग है, वही महंगा डॉलर हो गया इसका मतलब है तेरी हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो उसकी हुकूमत अच्छी थी, वो 160 का डॉलर रखी गई हुई थी। इट्स नॉट एज सिंपल। उसके पीछे क्या फलसफा है, हाउ दैट इम्पैक्ट्स द ओवरऑल इकॉनमी, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी हमने इधर की भी, बट थोड़ा सा डिटेल में आगे करेंगे। हम पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, इसके मसाइल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको पता है कि एक बड़ी एक असेंशियल चीज़ है। हर घर में बिजली होती है, हर घर में एनर्जी होती है। एनर्जी नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं होगी तो गर्मियों में ठंड और सर्दियों में गर्मी नहीं मिलेगी आपको, जो कि हीटर और एसी और पंखे से हम इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी नहीं होगी तो गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। तो इन तमाम चीज़ों का पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट है, उसके अराउंड क्या पॉलिसी है, उसको हम किस तरह आसान कर सकते हैं, फिर इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर, एजुकेशन और आने वाले वक्त में दुनिया में क्या ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिसमें हम अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करके एक ऐसी सिचुएशन में ला सकते हैं जिससे हम दुनिया की चेंजेस से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में बात करूंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं इसको इतना सिंप्लीफाई करूं कि जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें हैं कि हम बात करते हैं, वो फिस्कल डिफिसिट, वो जी एनर्जी पॉलिसी, वो जी इकोनॉमिक पॉलिसी, वो इकोनॉमिक पॉलिसी शॉलिसी कुछ ना हो, वो ऐसे हो कि जिस तरह हम आपस में दोस्त यार एक दूसरे को बता रहे हैं कि यार सिस्टम किस तरह चलता है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में समझ आई कि नहीं आई। अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग लगी तो क्या मिसिंग है, आपको क्या लगता है कि किस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए है, या मैंने कुछ वो मिस कर दिया है, या कुछ मैंने गलत बोल दिया, या कोई और एग्जांपल आपके दिमाग में आती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताएं। कमेंट ज़रूर किया करें, एंगेज ज़रूर किया करें। ये इंटरनेट का फ़ायदा ये, इट्स अ टू वे थिंग। मैं टीवी पे नहीं बैठा हुआ कि बस आपने सुना, मैंने जो बोल दिया आप आगे निकल गए। आप मेरे से बहुत ज़्यादा शऊर रखते हैं, आपका बहुत अच्छा माशाल्लाह क्रिटिकल थिंकिंग वाला दिमाग है। आप अपनी थॉट्स मुझे आके बताएं, आपके क्या ख्यालात हैं, मैं वो तमाम पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा जितनों में मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं वो भी मैं करूं। बट एनीवेज, यहां पर मैं इसको रैप अप करता हूं। दिस इज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वाचिंग दिल की बात एपिसोड नंबर 7। दिस वाज वेंसडे 14th ऑफ फेब्रुअरी 2023। आई शैल सी यू ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वन।